ஓம் சாந்தி. சபி கோன் சி ஜகே பே பேட்டே ஹை, இஸ்ட்ரியால் மே பேட்டே ஹை. இஸ்ட்ரியால் கோன் சி ஜகே, இஸ்ட்ரியால் கி விசேஷதா கியா ஹை? மதுபன் மே தோ ஹை. बाबा क्लास करा दे। देखो हम सब सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, और जिस जगह पे बैठे हैं वो भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगह है। इस जगह पे बैठ के उस सर्वशक्तिवान बाप ने पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का प्रयास शुरू किया है ना। कितनी बड़ी जगह, कितनी शक्तिशाली जगह है। ऐसी शक्तिशाली जगह पे हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे यहाँ बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए ना हमारे शायद भाइयों को, इतना शक्तिशाली जगह का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। देखो ये मधुबन के रात्रि क्लास जो होते हैं किस लिए होते हैं? सेवादारियों के लिए तो होते हैं, लेकिन उसमें भी खास करके जो हम यहाँ आते हैं, हमको शक्तिशाली बनाने का सबसे अच्छा साधन ये क्लासेस होते हैं ना। घर में तो हम रहते हैं, बहुत सारे वहां भी सेवाएं करते हैं, लेकिन वहां इस तरह से तो नहीं मिलता है ना। अलग अलग प्रकार का ज्ञान के पॉइंट्स, योग की विधियां, अनुभव, घर में कहीं कुछ नहीं मिलता है ना। तो मधुबन में आते हैं तो सबको इसका लाभ लेना चाहिए, और जैसे सामने होते हैं, जितने होते हैं, तो सामने सुनाने वालों को भी उतना ही अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। तो भाइयों को थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड कराना जो रहते हैं ना वहाँ, और कोई ऐसे है तो बोलना मिलने के लिए फिर, है ना कल। ठीक है, तो हम सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। आज की मुरली देखो कितनी पावरफुल थी, याद है किसी को वरदान क्या था मुरली का? अष्ट शक्ति संपन्न भव। इतना सा वरदान नहीं था, वरदान पूरा था। देखो आप वरदान जो होता है ना रोज के मुरली का, उसका अगर गहरा अभ्यास करेंगे ना, गहन अभ्यास करेंगे, तो वरदान तीन भागों में होता है हमेशा। क्योंकि बाबा कभी भी ये नहीं कहता है कि आओ तुम्हारे माथे पे हाथ रख दूंगा और तुम वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अगर बाबा ने कह दिया तुम अष्ट शक्ति संपन्न भव, तो अष्ट संपन्न भव हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन उसकी विधि भी वरदान में होती है। तो क्या है वरदान? समय और परिस्थिति प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। तो अष्ट शक्ति संपन्न भव बाबा ने कहा है तो बन ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए समय और परिस्थिति प्रमाण हमारी श्रेष्ठ स्थिति बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि आप लोग इस विश्व के, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली आत्माएं हो। तो शक्तिशाली आत्माएं मतलब आपके पास इस संगम युग पे जो आत्माओं ने भगवान को पहचान लिया है, बाबा के बन गए हैं, उन आत्माओं के पास तन की, मन की, धन की, समय की, संकल्पों की शक्ति भी सबसे ज्यादा है। मानते ऐसे हम लोग, बाबा ने स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने मुख से कहा है। तो तन की शक्ति हमारे पास सबसे ज्यादा है क्या? कौन कहते, कौन माता कहती है मेरे पास सबसे ज्यादा तन की शक्ति है? आप लोग सामने आ जाओ ना, सामने जगह खाली है थोड़ा, है ना, आ जाओ। तन की शक्ति देखो, अगर हम इस तन को ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, अगर सेवा में लगाते हैं, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है जो हमको रोक सके, है ना। किसी के पास सौ हाथियों का बल होता है, लेकिन वो भी समय पे डाउन हो जाएगा। क्योंकि उसने अपनी शक्ति खुद के लिए यूज किया। लेकिन हम अपनी तन की शक्ति भी ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, तो हमारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। अभी दादी जानकी को देखते हैं ना, 102 साल हो गया, लेकिन कल अभी ओडिशा जा रहे, संबलपुर जा रहे, कल दोपहर को जाएंगे, शाम को वहां प्रोग्राम है, फिर वापिस आ जाएंगे। कितना दूर है वहां। कई बार दादी को देखा हमने कि हॉस्पिटल में रहती है, हॉस्पिटल में एकदम ऐसे डॉक्टर कहते कि अभी नहीं जा सकते आप मधुबन, लेकिन दादी कहती नहीं मुझे मधुबन तो जाना है, मधुबन में इतनी सारी आत्माएं बैठी है। तो उस विल पावर से, उस मन की शक्ति से दादी खड़ी होकर मधुबन आ जाती है, यहां सेवा भी कर लेते। तो कोई भी प्रकार का शारीरिक विधि रोक नहीं सकता है, क्योंकि शरीर बाबा के यज्ञ में लगा दिया, तन बाबा के यज्ञ में लगा दिया, मन हमारा सबसे मजबूत है ना। कुछ भी हो जाए, अगर हम बाबा से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, बाबा से कनेक्ट है, तो हमारा मन शक्तिशाली होगा और मन किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा। धन की शक्ति है, कौन पैसे वाला है सबसे ज्यादा? ज्ञान रत्नों के। अच्छा, ज्ञान रत्नों के धन है, तो हम दुनिया के लोगों से कैसे धनवान बन गए बताओ? बाबा ड्रामा का हर राज हमको बताता है, हम क्या थे, कैसे चले, अभी कहां पहुंचे, अभी यहां से बात और कहां जाने वाले, अगले जन्म में फिर कहां जाने वाले, सारा राज बाबा हमको बुद्धि में क्लियर कर देता है। और दूसरा देखो, बाबा एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हमको अनुभव कराते हैं, लेकिन बात होती है रियलाइज करने की। बाबा के यज्ञ में जिस आत्मा ने अगर एक रुपया भी लगाया, एक रुपया भी बाबा के यज्ञ में लगाया, स्थूल धन भी, तो वो धन हमेशा के लिए जमा हो गया। बाबा तो कहते कि यहां जितना सफल करेंगे उसका 1000 गुना आपको मिलेगा, लेकिन इस जन्म में भी बाबा इतनी गारंटी देते हैं कि आपने अगर यज्ञ में अपना तन मन धन समय संकल्प लगाया है, तो रिटर्न में बाबा इतनी गारंटी देते कि आपको इस जन्म में किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी बहनें हैं ना, सेंटर की बहनें, उनके अनुभव बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जब कभी सेंटर बनाना होता है या कभी ऐसी समय आ जाता है, उनके पास भंडारी में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा संकल्प आता है, सेवा शुरू हो जाती है, तो अपने आप कहां से न कहां से आ जाता है और सेवा पूरी हो जाती है। वैसे ही बाबा का हर बच्चा, चाहे गृहस्थ में रहता है, चाहे समर्पित है, चाहे कहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर हम उसमें तन मन धन से यज्ञ में लगाते हैं, यज्ञ में करते हैं, तो उसका फल तुरंत मिल जाता है। तो हम धनवान हुए ना, धनवान हुए ना। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, बच्चों को दाल रोटी जरूर मिलेगी, दाल रोटी से वंचित कभी नहीं हो सकते। आज का है, चाहे कोई अरबपति व्यक्ति है, आज रेमंड कंपनी, बताया आपको रेमंड, कपड़े की कंपनी है रेमंड की, तो उसका जो ओनर है वो 1000 करोड़ का बिजनेस है उसका, उसने अपने आप में बिजनेस खड़ा किया, और अभी उसका बेटा जब आ गया तो उसने उसको घर से निकाल दिया। अभी घर घूम रहा है, एक भाड़े के घर में रह रहा है, वहां दोनों मियां बीवी रहते हैं। कितना अरबपति व्यक्ति, लेकिन क्या हालत हो गई। तो वैसे अगर हम बाबा के यज्ञ में कुछ लगाते हैं, तो उसका बाबा इतनी गारंटी लेता है, तो हम सबकी उससे भी ज्यादा धनवान हो गए ना। दादी कहती है ना कि सफेद कपड़े किसा खाली, फिर भी जगके वाली, जेब में कुछ नहीं है लेकिन हमारा कुछ काम नहीं रुक सकता, सारे दुनिया को चला सकते हैं। और उसके बाद में कौन सी शक्ति बाबा ने दिया है? तन मन धन और संकल्प, समय और संकल्प, ये जो शक्ति है संगम युग में हमको मिली है, इसके आगे कोई कहीं भी नहीं टिकता है। हम जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते, इतने पावरफुल संकल्प हमारे बन जाते, तो कितने धनवान हुए ना। लेकिन बाबा ने ये धन तो हमको बताया, इतना धनवान तो बताया, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने क्लियर क्लियर क्या कहा है? अष्ट शक्तिय संपन्न भव। तो ये शक्तियां तो है, लेकिन इसका मूल जो है, मूल है जो बाबा ने जो आठ शक्तियां बताई है, वैसे तो बहुत सारी शक्तियां बाद में होती है, मनसा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, समय की शक्ति है, लेकिन आठ शक्तियां कौन कौन सी है जो बाबा ने पहले सबसे पहले मूलभूत बताई है? सबसे पहली शक्ति कौन सी बाबा ने कही? सबसे पहली है सहन शक्ति, सबसे पहले सहन शक्ति, उसके बाद समाने की शक्ति, फिर निर्णय शक्ति, फिर पहले परख शक्ति, फिर निर्णय शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, फिर सहयोग करने की शक्ति, फिर विस्तार को संकीर्ण, विस्तार को संकीर्ण करना माना समेटना, तो उसके बाद की बात है, विस्तार को संकीर्ण करना माना। देखो सारी शक्ति है ना, सबसे पहले सहन शक्ति हो, सहन शक्ति के बाद में समाज सहन कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमने सहन तो कर लिया लेकिन समाते नहीं है, तो भी वो सहन शक्ति भी यूज नहीं होती है फिर। हाँ, मुझे ही इतना सुनना पड़ा, मुझे ही इतना करना पड़ा, मुझे ही झुकना पड़ा, समाया नहीं ना हमने, इसलिए वो सहन शक्ति भी वेस्ट हो गई। जब समा लिया, समाने की शक्ति आ गई, तो उसके बाद आता है परखने की शक्ति। उसके बाद जब समाने की शक्ति हमारे में आएगी, तभी हम परख सकेंगे चीजों को, अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है, श्रेष्ठ चीज कौन सी है, और उसके बाद में निर्णय शक्ति। निर्णय जब अच्छा होगा तो फिर सामना कर सकते, सामना जब कर लेंगे तो उसके बाद में सहयोग करना जरूरी है, सहयोग की शक्ति होना जरूरी है, सहयोग की शक्ति हो तो फिर उसके बाद में सारी चीजों को, विस्तार को संकीर्ण कर लो, समेट लो, और उसके बाद में समेटने की शक्ति। ये आठ शक्तियां मूलभूत शक्तियां है, आठ शक्तियों पे अगर हम कार्य करेंगे, आठ शक्तियां हमारे अंदर आएगी, तो अपने आप ही हम पावरफुल बनेंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल बनेंगे। उसको कहते हैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं शक्तिवान तो बन जाते हैं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन पाते, क्योंकि कोई न कोई शक्ति की कमी हमारे में रह जाती है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है तो आठों शक्तियों को हमारे अंदर धारण करना पड़ेगा। शक्तियों को धारण करने की विधि भी बाबा ने बताई है, क्या विधि है? याद करने की, और समय प्रमाण वापरना, और बार बार स्मृति मिला। देखो कोई भी चीज की शक्तियों को शक्ति संपन्न बनने की तीन स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप तो यह होती है कि ज्ञान के आधार से हमको पता है, ज्ञान के आधार से मुझे पता है मेरे में बहुत सहन शक्ति है। जब कुछ परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति आता है, तो याद भी आता है कि बाबा ने कहा है कि तुमको सहन करना है, है ना, याद आ जाता है। लेकिन याद आने के बाद ऐसी परिस्थिति हावी हो जाती है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए वो शक्ति नहीं याद आती, इमर्ज नहीं होती है। तो पहली स्टेप होती है ज्ञान के आधार से हमको पता होता है, तो ज्ञान के आधार से पता होने के बाद हमको स्मृति तो आ जाती है, लेकिन उसको कार्य में जिस समय चाहिए उस समय नहीं लगा सकते। सेकंड स्टेप आती है, जब ज्ञान के आधार से पता चल गया तो सेकंड स्टेप आती है कि मनन करना या किसी को गाइड करना। जब किसी और के ऊपर परिस्थिति आती है ना, तो हम उसके लिए सोचते हैं कि अच्छा ये परिस्थिति इसके ऊपर आई है तो इसने कौन सी शक्ति यूज करनी चाहिए। हम सामने वाले को बताते भी है, अच्छा ऐसे ऐसे है ना, तुम थोड़ा सहनशील बन जाओ या तुम थोड़ा सामना करना सीखो, कहते हैं ना, सामने वाले को सिखाते भी है। उसके लिए हमारे अंदर मनन भी चलता है कि अगर सामना करना है तो कैसे करना चाहिए, निर्णय करना है, डिसीजन लेना है तो कैसे लेना चाहिए, हमारे सोच विचार भी चलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अचानक से कुछ आ जाता है तो हम वो भी भूल जाते हैं। ऐसे याद आएगा नॉर्मल समय में, लेकिन अचानक से कुछ हो जाए तो वो भी भूल जाते हैं। इसलिए थर्ड स्टेप होती है, तीसरी स्टेप है कि उस शक्ति को धारण करना, क्योंकि बाबा ने सारी शक्तियां हमको पहले दिन दे दिया है, लेकिन शक्तियां तब धारण होगी जब उन शक्तियों को हम हर कार्य में यूज करना शुरू करेंगे, हर कार्य में। हर स्थूल कार्य में, हर सूक्ष्म कार्य में उन शक्तियों को यूज करना शुरू करेंगे तो हम वो शक्तियों के धारणामूर्त बन जाएंगे। जब धारणामूर्त बन गए तो फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो हमें वो परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती है, शक्तिहीन नहीं बना सकती है। तो तीनों स्टेप, पहले तो उसको समझना है ज्ञान के आधार से, फिर उसको मंथन करें और उसके बाद में धारण करना सीखे। और धारण करने के लिए, शक्ति संपन्न बनने के लिए दो बातें बाबा ने बताई है कि अगर हमारा मन पावरफुल बनाना है, मन शक्तिशाली बनाना है, तो उसका एक ही आधार है कि बाबा से कनेक्शन अच्छा हो, क्लियर और क्लीन कनेक्शन बाबा के साथ हो। बाबा के साथ जो कनेक्शन होता है वो क्लीन और क्लियर कनेक्शन बाबा के साथ हो, पहला मूलभूत आधार है। एक बार आपको याद होगा बाबा ने मुरली में बताया था कि हमारे जो शक्तिशाली बच्चे हैं, मास्टर शक्तिवान बच्चे हैं, वो भी बाबा के सामने पांच प्रकार की लाइनें लगाते हैं। सबसे पहली लाइन बाबा के सामने लगाते हैं, कौन सी लाइन लगाते हैं हम लोग सभी? पहली लाइन ये लगाते हैं कि बाबा के सामने हम एक याचक के रूप में खड़े हो जाते, या मेरे लिए या मेरे किसी औरों के लिए कि बाबा अब ऐसी परिस्थिति है, मुझे ये शक्ति दो या उसको शक्ति दो, इस प्रकार से बाबा के सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं भक्ति मार्ग जैसे। दूसरी लाइन होती है कंप्लेंट की, बाबा के सामने भी हम कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि बाबा मैं तो इतने साल से हूं, मैं तो इतना बार आपको याद करती हूं, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी ऐसा क्यों, फिर भी वो क्यों ऐसा करता है, यह परिस्थिति ऐसी क्यों आई, बीमारी क्यों आई। तो दूसरी लाइन हो जाती है कंप्लेंट की। तीसरी लाइन बाबा ने कहा है कि तीसरी लाइन बच्चे बाबा के सामने लगाते हैं कि बाबा को भी ज्योतिषी बना लेते हैं कि बाबा इतने से इतना मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, इतना मैं शुभ भावना का दान दे रही हूं, इतनी शक्तियों का दान दे रही हूं, लेकिन ये कब तक सुधरेगा, ये कब तक मेरी समस्या खत्म हो जाएगी, बाबा को पूछते हैं। तो बाबा कहते कि ज्योतिषी ग्रुप में बाबा को बना लेते हैं। चौथी लाइन बाबा ने कहा है कि बच्चे बाबा के सामने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे है, लेकिन बाबा के सामने भी उलहना की लाइन लगाते हैं कि बाबा मैं तो अभी बूढ़ी हो गई हूं, इस समय मिला, काश थोड़ा पहले मिल जाता, अभी तो मेरा शरीर ठीक नहीं है, शरीर बीमार है, इस समय मिल गया, इस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, काश पहले मिल जाता। और पांचवी लाइन बाबा कहते हैं, पांचवी लाइन लगाते हैं बच्चे अभी बहुत कम हो गई, बाबा ने कहा है कि अभी वो लाइन बहुत कम हो गई, फिर भी लगाते कि मेरे ऊपर कुछ कृपा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए, है ना। कहते ना हम अधिकार है बाबा के ऊपर, लेकिन जब याचक बन के खड़े हो जाते हैं तो हम सर्वशक्तिवान तो नहीं कहेंगे ना, शक्तिवान भी नहीं कहेंगे, उसको तो कमजोर कहेंगे ना, उसको तो कमजोर कहेंगे। एक कहानी है ना, एक फकीर होता है, वो सब जगह भीख मांगता रहता है, तो सब उसको कहते हैं तुम भिखारी है, तुम भिखारी है, तुम भिखारी है। फिर वो जाता है कि अच्छा मुझे सब भिखारी कहते हैं, तो इस नगर का सेठ है उसके पास जाता हूं, उसको देखता हूं। जब सेठ के पास जाता है तो देखता है सेठ तो राजा को मिलने गया हुआ है, वहां जाके खड़ा हो जाता है, तो वो राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ सेठ मिलता है उसको, और बोलता है यार मैं इसके पास भीख मांगने जा रहा हूं, तो ये उसके पास भीख मांग रहा है। जब राजा के पास जाते हैं तो राजा देखते है भगवान के सामने वो मांग रहा है कि मेरा राज्य ऐसे हो जाए, मेरा राज्य वैसे हो जाए, तो राजा भी भिखारी बना है, तो सभी भिखारी है। तो अगर हम ऐसे ही भिखारी बने रहे तो बाबा के बच्चे तो नहीं बने ना, तो शक्तिशाली तो नहीं बन सकते। और शक्तिशाली बनना है तो बाबा ने दो ही रास्ते बताए कि बाबा से मन शक्तिशाली होना है तो कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जब क्लियर कनेक्शन हो जाता है, स्पष्ट कनेक्शन बाबा के साथ है, तो हमें समय पे जिस परिस्थिति में जिस समय पे जो शक्ति की आवश्यकता है उसकी टचिंग एकदम क्लियर रीति से पावरफुल तरीके से हो जाएगी। और हमारे श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, श्रेष्ठ अगर करना है तो उसके लिए करेक्शन करना आना चाहिए। एक तो कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो, और दूसरा करेक्शन करने की ताकत मेरे में हो। अगर कुछ परिस्थिति आ गई उसमें से मैं सीख के आगे के लिए मेरे में कुछ करेक्शन नहीं किया तो मेरे कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे। करेक्शन मतलब अगर किसी ने मुझे समझा नहीं दिया कि तुम्हारे से ये गलती हो गई तो उसको सुधार मैं कर सकूं। एक तो बाबा के साथ जुड़े रहने से मुझे टच हो जाएगा कि मुझे कौन सी शक्ति की आवश्यकता है और उस समय मेरे से कोई कमी रह जाती है, मेरे से कोई गलती हो जाती है तो अगली टाइम के लिए मैं उसको सुधार सकूं, परिवर्तन कर सकूं। तो ये कनेक्शन और करेक्शन दो चीजें अगर रहते तो हमारा मन भी श्रेष्ठ बनता है, शक्तिशाली बनता है और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। कई बार क्या होता है हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, हमको पता है हमारे पास बहुत शक्ति है, हमारे कई सारे विघ्न भी अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन हर किसी के लाइफ में, हर किसी के जीवन में कई बार ऐसे होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण हम बार बार नीचे आ जाते हैं, हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। जो श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नीचे आ जाती है बार बार। एक आपको कहानी सुनाता हूं छोटी। एक राज्य था, राज्य में एक राजा राज्य कर रहा था। तो उस राज्य में उसके पड़ोस के कोई एक छोटा सा टापू था, वहां के लोग बार बार आके उसके ऊपर आक्रमण करते थे, उस राज्य में सबको दुख पहुंचा रहे थे, लूटमार करेंगे, दुख पहुंचाएंगे, अशांति फैलाएंगे। वो राजा बड़ा दुखी था उन चीजों में, वो सोचता था क्या करे इसके लिए। कई बार उसने अपनी सेनाएं भेजी, वो सेना भेजते समय क्या था, बोट से जाना होता था, टापू पे चढ़ के नीचे उनका छोटा सा राज्य था उसके ऊपर आक्रमण करना था। और वो तो थोड़े से आदिवासी टाइप के थे ना, तो उनसे फिर जीत नहीं पाते थे, लोग भाग के आते थे। तो बहुत समय से ऐसे चल रहा था, राजा सोचता क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो अपने राज्य में वो कहता है कि कौन है ऐसा जो उस राज्य को जीत के आएगा। तो एक नया सेनापति होता है, जवान सेनापति होता है, खड़ा होता है कि ठीक है राजा मैं ट्राई करता हूं। तो बोलता है ठीक है जाओ। तो सेना लेके जाता है, बोट से जाते हैं, बोट से जाने के बाद वो टापू आता है, टापू के चोटी पे पहुंच जाते हैं, नीचे वो राज्य है जिसको जीतना है। जब चोटी पे पहुंच जाते हैं तो उस समय वो देखता है और सभी सैनिकों को कहता है कि अभी आप पहले आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़ के देखो। तो जब पीछे मुड़ के देखते सारे के सारे तो वो देखते हैं कि जिन बोट से वो आए थे वो बोट सारी जल रही है, टूट गई है। जिन बोट से आए थे वो बोट सारी टूट गई है, तो अभी रिटर्न तो जा नहीं सकते, बोट है ही नहीं। फिर वो आगे बढ़ते उस राज्य को जीत लेते। कहानी मैंने किस लिए बताया कि हम लोग भी जो है ना, हर कोई ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन हमारा पिछला जो रास्ता है ना वो हमने खुला रखा है, उसके कारण हम बार बार वापिस आ जाते हैं। और रास्ता कोई प्रकार का होता है, देखो योग में बैठेंगे, योग में बैठते बैठते कई सारे रास्ते हमने खुले रखे। किसी का होता है देह और देह के संबंधों के प्रति आकर्षण होता है, जब योग में बैठेंगे ना तो किसी का याद आ जाएगी, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी बहू ऐसे है, मेरा बेटा ऐसा है ना, आता है किसी न किसी देह का या देह के संबंधियों का आकर्षण उसमें याद आता है। हमने रास्ता खुला रखा है ना, बंद तो नहीं किया, इसलिए जो ऊपर चढ़ते वापिस नीचे आ जाते। कभी कई कर्मेंद्रियों का भोग जो होते कर्म भोग वो सामने आ जाते, उसके कारण हम वापिस नीचे आ जाते। कभी ऐसे होता है जो दुनियावी चीजें होती है, दुनियावी जैसे आकर्षण टीवी होता है, सिनेमा होता है, या जिसको कहते अलग अलग प्रकार की फैशन वगैरह होती है, या खान पान की होती है, बहुत सारी वैसी चीजें होती है जो सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें है लेकिन हमने थोड़ी सी मार्जिन उसमें रखी है। और जब योग में बैठेंगे योग करने लगेंगे तो वही चीजें याद आती है। तो आज पानीपुरी मिल गई बाबा के घर में तो पानीपुरी अगर याद आ जाए योग में पानीपुरी अगर याद आ जाए योग में तो क्या होता है योग खत्म हो जाता है। पुरुषार्थ करने जाते हैं तो उसमें कोई कोई रास्ते खुले रखे हैं, जैसे अलबेलापन होता है, सवेरे उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, सुस्ती होती है, किसी के प्रति नफरत होती है ना, कोई कई होते हैं, कोई कोई व्यक्ति के प्रति नफरत बढ़ जाती है तो हमारा पुरुषार्थ हम खुद ही रोक लेते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये रास्ते हमने खुले रखे हैं, ये रास्ते खुले रखने के कारण बार बार हम ऊपर से नीचे आ जाते। तो अभी हम मधुबन में है 15 दिन, एक मास, एक हफ्ता, जितने भी है, तो बाबा के पास जाके, बाबा की झोपड़ी में जाओ या बाबा के कमरे में जाओ, और ऐसा एक अपना कोई रास्ता जो हमने खुला रखा है अभी तक, जिस कारण मैं जो चाहती हूं या मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, वो स्थिति नहीं बना पा रहा हूं, वो रास्ता हमको बंद करना है मधुबन से, करेंगे ना, इतना तो कर सकते ना। एक रास्ता हमको यहां से नीचे करके जाना है, दृढ़ नीचे, कि हमेशा के लिए वो चीज हमारे जीवन से निकल जाए। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो हम इजीली उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। लेकिन युद्ध होता है ना, युद्ध में जीतने के लिए केवल रास्ता बंद करने से युद्ध नहीं जीता जाता, लड़ाई केवल रास्ता बंद करने से तो नहीं जीती जाती ना। लड़ाई जीतने के लिए क्या चाहिए होता है, शस्त्र चाहिए होता है ना, आर्मर चाहिए होता है, शस्त्र चाहिए होता है। शस्त्र बाबा ने कौन से दिए हमको, शस्त्र दिए है शक्तियां और गुण, सारे गुण और शक्तियां हमारे लिए बाबा ने शस्त्र के रूप में दिए है, बस उसको हर परिस्थिति में हर समय पे सही शस्त्र यूज करना हमको आना चाहिए, सही चीज, सही समय पे सही चीज को यूज करना हमको आना चाहिए। देखो कोई भी गुण भी हो ना, तो गुण भी अगर हम कार्य में लाते हैं तो वो भी शक्ति बन जाता है। अगर मेरे में साहस का गुण है, कार्य में लाएंगे तो अपने आप ही शक्ति बन जाएगा। अगर मेरे में मधुरता का गुण है, कार्य में लाएंगे, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मैं मधुर बन के ही रहूंगा तो वो शक्ति बन जाएगा। तो कोई भी गुण या शक्ति, यह बाबा ने हमको शस्त्र दिए है विजय प्राप्त करने के लिए, और बाबा ने ढाल दी है ज्ञान रूपी ढाल। रोज बाबा की मुरली जो चलती है वो तो हमारे लिए ढाल का कार्य करती है, ड्रामा का राज उसमें पता चलता है, आत्मा का पार्ट पता चलता है, अन्य आत्माओं के पार्ट पता चलते हैं, भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, भगवान हमारे कितने साथ है वो मुरली के द्वारा पता चलता है, तो हमारी ढाल बन गई ना। और कवच है योग, कि योग की शक्ति अगर हमारे पास नहीं है तो हम चाहे कितनी भी शक्ति संपन्न हो लेकिन हम संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। योग की शक्ति के बिना हम संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अगर हमें विजयी बनना है तो सबसे पहले तो हमारे बैक गेट बंद करने हैं, जो हमने खुले रास्ते रखे हैं वो बंद करने हैं, उसके बाद में शक्तियों को अपने कार्य में लाना है। तो अभी मधुबन में दो काम आपको करने हैं, एक तो जो कहा हमारी जो बैक गेट रखा है, जो कमजोरी रखी है, वो बाबा के सामने स्वाह कर देनी है। उसके बाद में कोई भी एक शक्ति या गुण अपने लिए चुन लो और उस गुण के लिए बाबा के साथ बातें करो, उस शक्ति को लेके बाबा के साथ बातें करो। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने सामना करने की शक्ति अपनाई, मैंने सोचा कि मुझे सामना करने की शक्ति मेरे में चाहिए, तो बाबा के साथ पास जाके बाबा से बातें करो कि सामना करने की शक्ति मतलब क्या। तो मुरली के आधार से मनन करके बाबा के सामने बातें करो कि सामना करने की शक्ति किसको कहा जाएगा। सामने कोई झगड़ा करने आ रहा है, मैं उसको, वो मेरे को एक एक गाली दे रहा है, मैं चार गाली दे दूं, तो सामना करना हुआ। बाबा ने सामना कैसे करना है वो कैसे मुरली में बताया, उसके बारे में मंथन करो। दूसरा, अगर ये शक्ति मेरे में नहीं है, अगर मेरे में सामना करने की शक्ति नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, दो तीन प्रश्न बाबा के सामने अपने आप को पूछो और अपने आप उसके जवाब ढूंढो बाबा के साथ मिलके, कि अगर शक्ति मेरे में नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, और अगर मुझे ये शक्ति धारण करनी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। सिंपल है, सहज है ना, बहुत सहज है। अगर मुझे मधुर बनना है, गुण लेना है, मुझे मधुर बनना है, तो मधुर बनना है मतलब क्या करना है? मीठा बनना है, मीठा बोलना है, मीठा व्यवहार करना है, सबके साथ प्यार से रहना है ना। अलग अलग हरेक का अपना अपना होगा। अगर मैं मीठा नहीं बनता हूं तो क्या क्या हो सकता है ना? ये भी तो हमारे सामने क्लियर हो ना कि मीठा नहीं हूं, ये शक्ति मेरे में नहीं है, मीठापन नहीं है, तो क्या क्या होता है? और ये शक्ति आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो अगर इतना करेंगे तो हम मधुबन में आने का है, मधुबन में सेवा करने का हमारा जो समय है वो सफल हो जाएगा। सफल भी नहीं होगा, समर्थ बनेगा। इस समय को भी समर्थ बनाना, क्योंकि पांडव भवन ऐसी जगह है। पांडव भवन में आप लोग देखते हो अभी, किसी को अगर 2 घंटा आना है ना तो भी सहज से परमिशन नहीं मिलती है। मिलती है क्या? किसी को दिल होती है, बहुत दिल होती है कि नहीं जाके पांडव भवन में एक दिन रुके, लेकिन यह जगह ही नहीं है। और ऐसे समय में आपको इतना भाग्य मिला है, कितने दिन रुक रहे यहां? कोई है 8 दिन, कोई 15 दिन है, कोई 1 मास है, कोई 4 मास भी है, कोई 6 मास से भी होंगे। 6 मास वाले है कोई? दो लोग है तो है ना। देखो कितना भाग्यशाली है हम लोग, कितना पद्मापदम का भाग्य है। ऐसी जगह पे जहां लोग तरस रहे, इतना समय हमको मिल रहा है। लेकिन मधुबन बड़ा यज्ञ है, बड़े यज्ञ में हर किसी की आहुति उसमें पड़नी है। केवल यज्ञ को देखने वाले अगर बनेंगे तो हमको पुण्य नहीं मिलेगा, है ना? यज्ञ को देखने वाले अगर बनेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। यज्ञ में हमारा कुछ सफल हो जाए, यज्ञ से हम कुछ परिवर्तित हो जाए, तो यज्ञ में आने का फायदा है। तो इसलिए मधुबन में आए हो तो सेवा तो सब कर रहे, बहुत प्यार से कर रहे, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति ऐसी बना लो, इतनी पावरफुल बना लो कि यहां से जाने के बाद वहां सेंटर्स पे जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो सबको पता चलना चाहिए इस बार सेवा में जाके आए तो इस बार इनमें बहुत चेंज हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया। क्योंकि सेवा तो एक बहाना है ना। पांडव भवन में सेवा करना ये तो केवल एक बहाना है। सेवा के साथ साथ पांडव भवन में रहना अपने आप में भट्टी है। देखो 4 धाम किसी को मिलते हैं, अब कितनी बार 4 धाम का चक्कर लगाते हैं, सवेरे लगाते, शाम को लगाते, उसके बाद इतने अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते हैं। मधुबन ओम शांति भवन की मुरली मिलती है। दादी जानकी कहती है कि ओम शांति भवन की में आना अपने आप में दादी के लिए भी, खुद दादी की भी बोलती है कि मुझे ओम शांति में आने के बाद लगता है मधुबन में आए। देखो इतनी महान महान आत्माएं कितने मधुबन के प्रति कितने सालों से है, लेकिन कितना अथाह प्यार है, क्योंकि यहां शक्ति अपने आप में क्रिएट होती है। वहां कारोबार में रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, तो हमको शक्ति क्रिएट करनी पड़ती है, एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। यहां अपने आप होता है ना, बाबा से याद करना पड़ता है क्या? यहां अपने आप लग जाती है। तो ये नेचुरल याद का अभ्यास हमको निरंतर बना रहे, यहां जितना अभ्यास करेंगे उतना वहां काम आएगा। इसलिए कहा ना कि एक ज्ञान के आधार से गुणों को या धारणा शक्तियों को जानना एक अलग चीज है, मंथन के आधार से जानना उसके आगे की स्टेप है, लेकिन हर कार्य में उस शक्ति को कैसे लाया जाए वो है धारणा। और हमारा ब्राह्मण जीवन है ही धारणाओं का ना, अन्य मार्गों से हमारा ब्राह्मण जीव मार्ग डिफरेंट यही है ना। बाहर भी बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन वह धारणा के लिए कहीं स्थान ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। हमारे पास धारणा ही मुख्य आधार है, और उसमें भी धारणा बताई किसने है? स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, जो सृष्टि को चलाने वाला है, नवनिर्माण करने वाला परमात्मा है, भगवान है, उसने स्वयं बताया है। उसका आधार भी देखो, बाबा ने ब्राह्मण जीवन चलाने के लिए 2 चीजें दी है, 2 पटरियां दी है, श्रीमत और मर्यादाएं। श्रीमत और मर्यादा है। श्रीमत बाबा के मुरली में रोज मिलती है, मर्यादाएं भी रोज मुरली से ही मिलती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। और हम हमारा यहां का जो समय है, उस समय से हम अपना जीवन बना के अन्य के लिए सैंपल बना सकते हैं। तो अच्छा लगा आप सबसे मिलके। बाकी मधुबन में सेवाएं तो चलती है, मधुबन में रहते हैं तो मर्यादाएं तो सबको पुरानी है ना, सारे एक साल से पुराने होंगे। एक साल से नया वाला कोई है क्या, इनको एक साल ज्ञान में नहीं हुई है, ऐसा कोई है नहीं है ना कोई, दो साल से कम। अच्छा देखो बाबा की आपने एक नोट किया होगा, जैसे बाबा की याद करते ना योग करते हैं, कई बार तो बहुत मजा आता है अच्छी तरह से, और कई बार कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग होता है या कभी कभी थोड़ा सा भारीपन आ जाता है। तो कभी सोचा है इसका कारण? जब आप नोट करेंगे तो जब मुझे बाबा के याद में मजा नहीं आ रहा है तो उसका एक ही कारण होता है कि उस समय के अंदर मेरे से हमारी जो मूल धारणा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटी सी कमी रह जाती है या उल्लंघन हो जाता है। तो धारणाएं जितनी मजबूत होगी उतना हमारा योग अच्छा लगेगा, योग अच्छा लगेगा तो स्थिति अच्छी रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी तो सर्वशक्ति संपन्न बनेंगे। तो सारा आधार है योग और धारणाओं पे। तो मूल धारणाएं तो पता है ना, मूल मर्यादा है बाबा ने जो बताई है। आज सेवादारी सारे बैठे है इसलिए कह रहा हूं, मूल मर्यादा है बाबा जो कहते हैं वो पता है सबको क्या है? सबसे पहली मर्यादा पवित्र रहना और आज ही का पाठ बजाना। अच्छा, सबसे पहली मूलभूत धारणा हमारी जो है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता में तन मन धन संबंध सबकी पवित्रता है ना। तो मधुबन में आए हैं तो पहली मूल धारणा के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। अगर मन में भी कुछ व्यर्थ संकल्प आते हैं, यहां आके भी, यहां आने के बाद भी अगर कोई व्यर्थ संकल्प आते हैं, निगेटिव संकल्प आते हैं, तो भी इस धरा पर आकर हम बहुत बड़ा विक्रम कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसे संकल्प आते हैं, जब भी कोई ऐसे विचार आते हैं, तो उनको तुरंत बाबा के सामने जाके बाबा के सन्मुख सब कुछ सच्चे दिल से अर्पण कर दो। और यहां से पूरा प्योर सोल बन के जाना है बाहर। दूसरी धारणा है शुद्ध अन्न की। शुद्ध अन्न सब खाते, सभी खाते शुद्ध भोजन माना, बाबा की याद में कौन सा नॉनवेज बनाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे तो खाएंगे तो बाबा की याद में बनाया हुआ सात्विक भोजन बाबा की याद में स्वीकार करेंगे तो शुद्ध अन्न बनेगा। ठीक है, इसमें तो लगभग सारे पास होंगे है ना। और अगर नहीं भी है तो अभी यहां से प्रण करके जाओ। हमने देखा कई कुमार कुमारियां यहां बाहर बहुत बिजी रहते, लेकिन जो इन धारणा पे एकदम पक्के है ना, खासकर खान पान की धारणा पे, तो उनको शुरू में थोड़ा सा लगता है संघर्ष। शुरू में से लगता है कि नहीं, मैं जॉब करूंगा, जॉब करने के बाद कैसे पकाऊंगा, कैसे खाऊंगा। लेकिन एक बार जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद उनको जीवन में बहुत कुछ फायदे आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बाहर का भोजन तो बाहर का भोजन ही होता है, शरीर भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, और बाबा से दूर भी हो जाते हैं। इसलिए जो इस धारणा पे अटल है, कुमार कुमारिया खास करके, और बाकी सभी ब्राह्मण परिवार के लिए तो है ही शुद्ध भोजन का, लेकिन उनके लिए खास कि इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करे तो हमारा ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण लाइफ बहुत अच्छी तरह चलता है। शक्तिशाली बन के हम दूसरों के सैंपल बन जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, डॉक्टर हुए पूरा 16-18 घंटा तो जॉब करता है। वहां से आने के बाद वो तीन भाई लोग साथ में रहते हैं, तीनों मिलके भोजन बनाएंगे, भोजन बना के बाबा को भोग लगाएंगे, भोग लगा के तीनों साथ में खाएंगे। तो अभी भी उनका जीवन दूसरों के लिए सैंपल बन जाता है, कितनी सेवा अपने आप हो जाती है। तीसरी धारणा है दैवी गुण, जो अभी बात किया हमने कि गुण और शक्तियां अपने जीवन में अपने एक एक कर्म में आना, वो भी एक ब्राह्मण जीवन की धारणा है। हमारे कर्मों से, हमारे मुख से, हमारे नयनों से कोई भी अवगुण प्रदर्शित ना हो। अगर अवगुण प्रदर्शित हो रहा है मतलब हम ब्राह्मण जीवन की धारणा का उल्लंघन कर रहे हैं। और चौथा सत्संग। सत्संग मतलब मुरली क्लास कर लिया, क्लास अटेंड कर लिया, परमात्मा के संग में रहना है। सत्संग मतलब सत्य का संग, और परम सत्य एक ही है, शिव बाबा। शिव बाबा ही धरती पे आके हमें ज्ञान सुना रहे, मुरली सुना रहे, और उस सत्य के संग में रहना ही सत्संग है। तो ये मूल धारणाएं हमारी है, धारणाओं पे अगर हम कायम हैं तो हमारा योग भी ठीक रहेगा, स्थिति भी ठीक रहेगी। इसके लिए बाबा ने कुछ मर्यादाएं सिखाई है, धारणाओं से चलने के लिए कुछ मर्यादाएं बाबा रोज बताते हैं। जैसे सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा को याद करना, प्रतिदिन मुरली क्लास करना, उसके बाद में सेवाएं किस प्रकार से करना। जब सेवा में आए ना, तो सेवा हम किसी एक व्यक्ति की सेवा करने तो नहीं आए, किसी डिपार्टमेंट इंचार्ज की सेवा करने भी नहीं आए, हम किसकी सेवा करने आए हैं? बाबा की सेवा करने आए, उस परमात्मा की सेवा में हम आए हैं। तो हमेशा ये स्मृति में अगर रहे कि मैं उस परम पिता की सेवा में हूं, विश्व कल्याण के कार्य में हूं। अगर रोटी भी बना रही हूं तो रोटी एक रोटी तो नहीं बना रही हूं, ये रोटी खाने वाला व्यक्ति भी कौन होगा? बाबा का बच्चा होगा और श्रेष्ठ आत्मा होगा। और एक रोटी आपके हाथ की रोटी खाने वाला व्यक्ति कौन होता है? क्या सोच के रोटी बनाते हो आप लोग? कौन खाएगा इसको? अच्छा, कर्मातीत बनेगा, बाबा के लिए बना रहे। अच्छा, ब्राह्मण आत्मा क्या? ब्राह्मण आत्माओं के लिए खिला रहे। दादी थी ना अपनी, दादी प्रकाशमणि, तो हमेशा माताओं से मिलने जाती थी रोटी बनाने। रोटी बनाते समय हमेशा जाएगी दादी मिलने के लिए, कई बार दादी अपने हाथ से रोटी भी बनाती थी वहां। तो दादी जी हमेशा माताओं को कहती थी कि माता तुम एक रोटी जो बनाती है वो रोटी जिसके पेट में जाएगी, वो रोटी खाने के बाद वो व्यक्ति सारे दुनिया को बदलने वाला व्यक्ति है। इतनी ताकत है उस रोटी में, इतनी शक्ति है उस रोटी में। तो उस शक्ति से, उस बाबा की याद से, उस एनर्जी से अगर हम बनाते हैं तो खाने वाले व्यक्ति भी उतने शक्तिशाली बन जाते हैं, और शक्तिशाली बनने के बाद सेवाएं अपने आप ही बढ़ती है। कई बार आप लोग देखते होंगे ना, ये जो पार्टी में कई सारे लोग आते हैं, नीचे से आते हैं ऊपर, तो जो ऊपर भोजन बनता है ना, तो भोजन भी इतना 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 ले जाते अपने साथ में। तो कहते कि यहां पांडव वंग का भोजन है ना, हम प्रसाद समझ के ले जाएंगे, सबको बांटेंगे। तो हम तो एकदम छोटे रूप से बनाते हैं, लेकिन कितना लोगों को महत्व है। तो ऐसी एक छोटी 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 मर्यादाएं है, मर्यादाओं पे चलने से मधुबन में आना सफल हो जाएगा। ठीक है, योग 9:30 बज गया। आपको कुछ कहना है किसी को? योग कर लेते, फिर 5 मिनट बैठना है ना।